सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पे मदद तुम्हारी
है। हमारा मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है बोलो? अब दोनों सामने आ जाओ तो ज्यादा मुझे गर्दन न झुकानी पड़े, मोड़नी न पड़े। यहाँ जाओ सेकेंड लाइन में, देखो इधर इधर। सबसे मुख्य सब्जेक्ट हमारा योग है। आज हमारी चर्चा है, जिनको चिंतन में हिस्सा लेना हो पीछे वाले भी आगे आ सकते हैं, कौन बन सकते हैं सफल योगी। सुना टॉपिक, योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। जो योग में सफल वो हर कार्य में सफल, जो योग में सफल वो जीवन भर सफल, जो योग में सफल वो पूरा कल्प सफल। योग इतना बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन योग में सबसे बड़ी चीज होती है मन बुद्धि को स्थिर करना। इसलिए बाबा ने एक बहुत डीप महावाक्य सुनाया है, तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है बुद्धि को स्थिर करना। इस पे चर्चा करेंगे आज, किनकी बुद्धि स्थिर हो सकती है, कौन सफल और सहज योगी बन सकते हैं। बनना तो सभी चाहते हैं, पर सबसे बना नहीं जाता, एक बात है या नहीं, या बन जाते हैं, सबसे बना नहीं जाता। हफ्ता अच्छा फुटपात चलेगा, फिर दो चार दिन डाउन हो जाएगा, फिर जो लगाएंगे अच्छा करेंगे फिर ढीला हो जाएगा। किसी चीज का इतना ढीला होता है कि फिर लंबा समय ढीला हो जाता है। उत्साह किया 2 मास बहुत अच्छा, फिर 3 मास ढीला हो गया तो उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए साल लगता है, जल्दी नहीं होता। तो आज हम चर्चा करते हैं कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक योगी बनने वाले के लिए। बोलो, सोचना है, सभी को चिंतन करना है। पहली क्वालिटी सरल स्वभाव, सॉफ्ट एंड स्वीट नेचर, पहला इस पे चर्चा करेंगे। चलो दूसरा प्योरिटी, मैंने बोले अब तीसरा हाँ वो बहुत अच्छी बात है, अपनी बड़ी धारणा बता दी, निष्काम भाव, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा और निर्दोष दृष्टि, साक्षी भाव, मैंने बोले अब चिंतन करें, अच्छा शुद्ध संकल्पों का खजाना, और अच्छा अंतर्मुखता, हाँ ये अलग धारणाएं हो गई योगी के लिए। नष्टो मोहा, क्योंकि अगर देहधारियों में बुद्धि बहुत है तो योग लगेगा नहीं। और भी कुछ रह गया बोलो? त्याग, इम्पोर्टेंस इज त्याग। पीछे वाली माताएं बोलेंगी जोर से या सुनना है केवल? है संतुष्ट आत्मा, बहुत अच्छा बोला, संतोष से भी योग अच्छा लगता है। और बोलो, कुर्सी वाली माताएं, सोचा पीछे बैठा इसलिए कोई पूछेगा नहीं। में ज्ञान का मंथन, कर्म योगी बनने का लक्ष्य, ठीक बोला। आत्मिक दृष्टि, समर्पित भाव, आपने तो इतनी पॉइंट सुना दी, मैं सोचा भी नहीं था। वेरी गुड। और बोलो इधर के सेवा कुर्सी वाले, कोई भी आकर्षण न हो, आकर्षण से मुक्त, बहुत अच्छा। इसके साथ साथ इच्छाएं भी बहुत कम, मतलब छोड़ते चले। अनासक्त वृत्ति, और बोलो पीछे वाले, हाँ ज्ञान का मनन हो गया। पीछे वाले चेयरमैन बोलो, निरहंकारी, बिल्कुल ठीक बात है, निरहंकारी, किसी कमजोरी कमी को न देखना, न अवगुणी दृष्टि, न पर चिंतन की आदत, यानी व्यर्थ से जो जितना मुक्त होंगे उतना अच्छा योग लगेगा। हैं, दाता की वृत्ति है, बोलो, शुभ भावना आ गई। और बोलो, हैं, मौन भी बहुत अच्छी चीज है, अंतर्मुखता से मौन को भी जोड़ ले। और बोलो कुछ है पीछे वाले भाई, जोर से बोलेंगे, लगाओ मुक्त, नष्ट हो वहां में आ जाएगा वो। तो ये सब धारणाएं हैं जो आत्मा को योग युक्त रहने में मदद करती हैं। लेकिन साथ में अब और कुछ सोचे, दूसरा पहलू, योगी बनने की दृढ़ इच्छा, एक ही लक्ष्य हो जाए कि हमें श्रेष्ठ योगी बनना है, योग के महत्व का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए। ऐसे ही नहीं, बाबा ने कहा मुझे याद करो, हमें बाबा को याद करना है, लेकिन योग का क्या महत्व है, हमारे योग से चांद तारे बदलेंगे, हमारे योग से प्रकृति बदलेगी, हमारे योग से वायुमंडल बदलेगा, हमारे योग से भटकती आत्माओं को ठिकाना मिलेगा, हमारे योग से संसार से दुख, अशांति, टेंशन, रोग, शोक सब दूर होंगे, यही होंगे सचिव में, नहीं यही अनुभव होगा लास्ट में कि योग की शक्ति ये सब काम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। तो योग का पूरा महत्व तो हमारे पास होना चाहिए और लक्ष्य बना लेना चाहिए, हमने त्याग किया है तो उसका इनाम लेना है योग युक्त जीवन। त्याग किया है ना सबने, माताओं ने तो कितनी गाली सुनी होगी, मारे भी खाई होंगी कईयों ने, पतियों से क्या क्या हुआ होगा। मेरे पास माता अपनी कहानी बताती है ना, मैं सोचता हूँ सचमुच माताओं से बाबा प्यार क्यों करता है, भाइयों से कम करता है, सचमुच माताओं से बहुत प्यार करता है, क्योंकि ज्ञान में चलने के बाद माताओं को सताया बहुत जाता है। एक माता मिली मुझे, मैं कभी हैदराबाद से आया, परसों मिली मेरी लड़की, मैंने उसको मजदूरी करके इंजीनियरिंग कराई, बीटेक, मजदूरी करके पेट काट कर अपना, और उसने क्या किया, इंजीनियरिंग करते भाग गई, और एक ऐसे लड़के शादी की जो 10वीं क्लास पढ़ा हुआ है, छोटी सी नौकरी करता है मजदूरों जैसी, कितना बुरा उस माँ पे इफेक्ट होगा, सोचो आप, माताएं बैठी है ना बेचारी, दिल थाम के बैठी, बाबा की है इसलिए कुछ शांत है, बिल्कुल मुस्काना भूल जाते हैं लोग, कई आते हैं रोज ऐसे केस बच्चों के लिए। हमने एक माता और आई इसी ग्रुप में दो दिन पहले ही, मैंने अपने बच्चे को ऐसे मजदूरी करके पढ़ाया, अच्छी नौकरी पर पहुंच गया, उसकी शादी कराई, बहू जो आई मुझे घर से निकाल दिया। हाँ कल ही आई वो माता, मैं नीचे कल आया, गुजरात की माता बेचारी रोने लगी, मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया, कितने स्वप्न देखे थे। मैंने कहा तुम कहाँ रहती हो, पति है, पति नहीं है, कहाँ रहती हो, सेंटरों में अलग अलग जाके रहती हूँ। मैंने उसको हंसाया, बहू ने घर से निकाला तो भगवान के घर में भेज दिया ना, तो हंसी, जी हाँ, कहा मुझे बहने बहुत प्यार से रखती हैं, मैं दो चार मास कहीं ऐसे रहती हूँ, पर मुझे लगा देखो क्या मनुष्य का हाल हुआ है, बच्चे कैसे हो गए हैं, बहुएं कैसी आने लगी, लड़कियाँ हाई फाई आजकल ये बहुत हो रहा, लड़की ने शादी की उसका पहला काम है माँ से बात नहीं करना, आज से मैं ही तुम्हारे लिए भगवान हूँ, पहले पति परमेश्वर होता था और पत्नी परमेश्वरी, उल्टा हो गया, बात नहीं करना माँ से, पैसा एक भी नहीं देना है माँ को, ये कॉमन हो गया आजकल, तो मैं सोचता हूँ इसीलिए भगवान माताओं को प्यार करता है। फिर मैंने इस माता को तो कल हंसाया, मैंने कहा तुमने भी अपनी सास को ऐसे ही तो नहीं निकाल दिया था, कि नहीं मैंने तो नहीं निकाला, तो पिछले जन्म में निकाला होगा, फिर रिटर्न हुआ है जरूर कुछ, क्योंकि कोई भी कर्म का हाँ प्रतीक का फल भीक्षण अवश्य होता है, जो हमने किया है जो हमें मिल रहा है वो जरूर हमने भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है, इसलिए चित्त को शांत रखना पड़ेगा। तो ज्ञान स्वरूप होकर योग के महत्व को समझते हुए सभी को योग युक्त जीवन बनाना है, एक है बैठ के योग करना, कर्म में योग करना, और तीसरा है जिनका अच्छा योग होता है उनका जीवन योग युक्त हो जाता है, जीवन योग युक्त। अब हम और चिंतन कर लेते हैं, सब चिंतन करना, जीवन योग युक्त है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, नंदू भाई आपको शुरू करना है, जीवन योग युक्त है हम अच्छा योग करते हैं, बाबा के कमरे में भी, सवेरे उठ के भी, शाम को भी, कर्मों में भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो लक्षण क्या रहेंगे, क्या लक्षण बढ़ते जाएंगे, जरूरी नहीं एक दिन में लक्षण आ जाएं, पर वो लक्षण हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे, क्या होंगे, हर परिस्थिति में संभाव होता जाएगा, धीरे धीरे होगा, ये बहुत बड़ी स्थिति है, माताएं बोले हाँ कर्म बांधे नहीं, ये बड़ी स्थिति हो गई, लेकिन हम पहले छोटी छोटी बातों की चर्चा करें, सबसे प्रेम और सबके लिए अच्छी भावनाएं हो जाएंगी, जैसे दुनिया में ना काला गोरा विदेशों में बहुत है, ये अफ्रीकन लोग काले होते हैं ना तो उनसे नफरत करते हैं अंग्रेज लोग बहुत, तो इसको वहाँ काला गोरा कहते हैं, अब वो कम होता जा रहा है, बहुत लोगों ने इस पर अच्छे काम किए समाज सुधार के, लेकिन बड़ा छोटा इस धर्म उस धर्म इस जाति उस जाति का है, इनसे ऊपर उठकर प्रेम और सुभावनाएं संभाव होता जाएगा, योग युक्त जैसे जैसे हम होते जाएंगे हमारा चित्त निर्मल होता जाएगा, हमारे गोल कैसे होते जाएंगे, मीठे सुखदायी बहुत अच्छे जो दूसरों को प्रिय लगे, अब बोलो अच्छी अच्छी बातें, जो योग युक्त होंगे वो और बोलो सदा खुश रहेंगे और धीरे धीरे अनासक्त होते जाएंगे, जैसे इच्छाओं के त्याग से योगी बनेंगे, योगी बनने पर संसार की कोई भी चीज इच्छा नहीं रहेगी, कोई आकर्षण नहीं रहेगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, हमें ये मिल जाए तो हम कितने अच्छे हों, हमारा नाम हो जाए, दुनिया में यही है ना, एक दो कार खरीद लें, अपना मकान बन जाए अच्छा, नाम हो जाए, लेकिन जब योग योग की स्थिति होती है तो ये सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, सोचो और योग योग की स्थिति में हल्कापन बहुत रहेगा, कोई भी चीज भारी नहीं करेगी, टेंशन नहीं देगी, परेशानी नहीं पैदा करेगी, निरहंकारिता तेजी से बढ़ती जाएगी, क्योंकि निरहंकारी होना भी एक बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, एक है निर्अभिमान छोड़ने से, अभिमान छोड़ने से योग अच्छा लगने लगेगा, लेकिन योग अच्छा लगते लगते अहम का सूक्ष्म स्वरूप समाप्त होता जाएगा और सूक्ष्म स्वरूप उसका होता है मैं, मान की इच्छा। पूछा नहीं गया तो परेशान, डिस्टरबेंस बहुत, अपमान की फीलिंग बहुत, ईमान की इच्छा वाले के लक्षण होते हैं। ऐसे तो सभी कह देते हैं हमें ईमान की इच्छा नहीं है, जिससे बात करो कहेगा हमें मान जान नहीं चाहिए। हम एक भाई को देखते थे, वो पूरा जीवन यही कहता था, हाथ हिला के, हमें मान जान नहीं चाहिए, वो तुम लो। पर सबसे ज्यादा भूख उसे ही थी, वो सबको दिखता था, सब हंसते थे उसको जब वो कहता था, सबसे सबको फील होता था कि सबसे ज्यादा इच्छा इसे ही है, इसीलिए कह रहा है मुझे नहीं चाहिए तुम्हें चाहिए। तो हम अपने जीवन को योग युक्त बने, और आगे अगर सूक्ष्म धारणाओं पे चले तो जैसा बताया त्याग भी सूक्ष्म होता जाएगा। कर्म बांधेंगे नहीं, विदेह स्थिति माना संगठन में रहते, परिवार में रहते, अपनों के बीच रहते, उनके लिए सब कुछ करते, जैसे माँ बच्चों के लिए सब कुछ करेगी, उपराम विदेही स्थिति है ये। तो योग युक्त होने से ये सब लक्षण हमारे जीवन में होंगे। और एक चीज और योग के लिए चाहिए, वो योग से पहले भी चाहिए और वो योग के बाद भी बढ़ेगी, वो है वैराग्य। भिन्न भिन्न चीजों से जो व्यर्थ है उनसे वैराग्य, और जैसे जैसे योग होता जाएगा तो वैराग्य की फीलिंग सूक्ष्म रूप लेती जाएगी। माताएं सोचती होंगी हमें वैराग्य कैसा, हाँ सरलता बहुत आएगी। कैसा वैराग्य माताओं को चाहिए? नहीं, बेहद गर्व चाहिए। प्रैक्टिकल में घरों में रहती हैं आप, आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, किसी को बच्चों की शादी भी करानी है, बच्चों की केयर भी करनी है, किसी को उनके साथ भी रहना है, मोह ममता भी है, अलग भी नहीं हो सकते, साथ भी नहीं रह सकते। सुना ये बात मैंने क्या कही? कई माताओं की ऐसी समस्या है, साथ भी नहीं रह सकते, बहू से लड़ाई झगड़ा, और अलग भी नहीं हो सकते, मोह, ये दोनों बातें सामने आती हैं। योग युक्त होने से ये बैलेंस में हो जाता है। देखिए जो योग युक्त आत्मा है वो बहुत अच्छे स्वमान में स्थित रहती है, योग का एक हिस्सा स्वमान भी है। और जब आत्मा बहुत अच्छे स्वमान में रहती है तो सब उसे सम्मान देते हैं। माताएं ध्यान दे बहुत इस बात पर, जो ग्रस्त में रहते हैं वो इसका प्रयोग करें। अगर आपका परिवारों में विरोध होता है तो इसका कारण ही है कि स्वमान में नहीं है, देहाभिमान में है। और देहाभिमान माना मोह माया में है, देहाभिमान माना ये नहीं ना देह हूँ ये मानते हैं, लेकिन उसका स्वरूप है मोह माया में ज्यादा अटके हैं। स्वमान सम्मान दिलाता है, दोनों बातें बाबा की याद रखनी, गृहस्थ वालों को सभी के लिए है। जितना देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे उतने ही सबके प्यारे बनेंगे। अगर कोई आपको प्यार नहीं करता परिवार में तो प्रैक्टिस करें देह से न्यारे होने की, और ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी आनी चाहिए हमें। तो योगी बनने के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग भी करनी पड़े, प्लानिंग। जैसे यहाँ आप सभी सवेरे भी आके योग करते हैं, शाम को भी मैं देखता भी हूँ, सुनता हूँ, बहुत अच्छा सब योग करते हैं, कर्म में भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक सुंदर प्लानिंग हो। और एक बहुत अच्छी प्लानिंग ये हो सकती है, माताएं भी कर लें अपने अपने भाई भी, कि जितने तरह के कर्म हमें करने होते हैं उनमें अलग अलग अभ्यास, एक ऐसी प्लानिंग है जिससे हम सहज और सफल कर्म योगी बन सकते हैं। हमें पानी पीना है, 5-7 बार पीना है, पानी का गिलास लिया, कुछ याद करेंगे, आदत डाल लो, क्या याद करेंगे? हाँ मैं परम पवित्र आत्मा, एक ही चीज सदा याद नहीं हो सकती, बोर हो जाएंगे, मैं फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कभी बाबा आओ मुझे पानी पिलाओ, इंटरेस्टिंग बना दो मनोरंजन, बाबा आओ मुझे पानी पिलाओ। अरे बाबा न पिलाए पर याद तो हो गई ना, पिलाए अभी लेकिन याद तो हो गई ना बाबा जी। ऐसे मान लो भोजन खा रहे हैं, दिन दिन अभ्यास रख लो, कभी कुछ कभी कुछ, एक एक हफ्ता बाबा आओ, आह्वान करो, बैठो यहाँ मेरे साथ बैठकर भोजन करो। कभी मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, कभी भोग बाबा को अर्पित करना ऊपर जाकर फिर खाना, कभी बाबा मुझे खिला रहा, वैसे ही बाबा कह दो आओ बाबा मुझे खिलाओ। ऐसे अलग अलग कर्म में अलग अलग अभ्यास। माताओं को रोटी बेलनी है, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ सेवा करने के लिए। स्नान करना है, ये देह मेरा मंदिर है, मैं आत्मा इसकी इष्ट देवी हूँ। तो चार बार याद कर लो। ये अलग अलग अभ्यास हमारे योग को सरल बनाएंगे, आनंद आएगा करने, बोर नहीं होंगे। योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ लोग बोर बहुत होते हैं, ये रोज रोज बाबा को याद करना है, सोचते बाबा भी तंग हो जाएगा हमसे, सारा दिन मुझे याद करते रहते। मैं हसी में कहा करता हूँ, बाबा को ऊपर बैठने न दो, आओ बाबा 20 बार बुलाओ दिन में, हाँ? आओ बाबा, कुछ भी काम कर रहे आओ बाबा नीचे आओ हमारे साथ आओ, तो कितना अच्छा योग हो जाएगा। एक संकल्प हमें योगयुक्त बनाएगा, और इन सब से फायदा ये होगा क्या, व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त। वो संकल्प का रस इतना आएगा आत्मा को। ऐसे ही सवेरे है, योग में बैठना है, तो उसकी प्लानिंग हो, कैसे हम पहले 500 रूपों का अभ्यास करेंगे, हम 20 रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे परम धाम में, हम ग्लोब पर खड़े होकर सकाश देंगे, हम सामने ग्लोब को रखकर वाइब्रेशंस देंगे, हम प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस की सकाश देंगे, हम बाबा से रूढ़िहान करेंगे, हम वतन में जाके बाबा से वरदान लेंगे। अच्छा प्लानिंग करो, प्लानिंग के बिना योग नहीं होगा। प्लानिंग के बिना क्या होगा, योग में बैठेंगे और 5-7 मिनट के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ जाती है माताएं, निद्रा देवी की गोद में, परम धाम में बैठे बैठे मन शांत और गर्दन नीचे, होगा ना, होता है या नहीं, होता है। इसलिए योग को अलग अलग ढंग से अभ्यास करना, याद रहेंगे मैंने कैसे बताया, 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसमें स्वमान भी आ जाएगा, शरीरीपन भी, अपने आदि स्वरूप की स्मृति भी, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति भी, सूक्ष्म वतन में जाओ बाबा से रूढ़िहान, सिर पर हाथ बाबा से वरदान लें, फिर परम धाम में जाओ ऐसे याद रहेगा, अरे नीचे 5 स्वरूप, सुख संवर्तन में वरदान बाबा से रूढ़िहान, फिर परम धाम में बीज रूप स्थिति 5-5 मिनट, फिर नीचे आओ फरिश्ता बनकर सकाश, कभी ग्लोब पर खड़े होकर, कभी सामने ग्लोब पर, कभी प्रकृति को, कभी सारे संसार को, बांट लो, फिर परम धाम में जाओ 5 मिनट पावरफुल योग करो, फिर सुख समतन में बाबा से रूढ़िहान कर लो, फिर एक बार 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो, तो नींद भी नहीं आएगी और योग बहुत सुखद हो जाएगा। है? क्या कह रही भाई, अरे दोनों से कर लो ना, ब्रह्मा बाबा से की वो भी शिव बाबा को पहुंच गई, शिव बाबा से की वो भी ब्रह्मा बाबा को पहुंच गई, इसमें कंफ्यूज, पता तो चलेगा जब आप मेरे से बात करो और आपको खुशी लगेगी, भगवान से बात करोगे तो आनंद आ जाएगा, किसी बड़े आदमी से बात किया जाए तो सारा दिन मस्ती में रहते हैं, आज मैंने उससे बात की। भगवान से बात करेंगे आनंद होगा, खुशी होगी, शक्ति मिलेगी, वो आपको रोज बात करने लगा, फील होने लगेगा कि बात हुई। सूक्ष्म वतन में चलो, देखो कैसे करना है। सूक्ष्म वतन में अपने को फील करो, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूँ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कैसे जाएं, फरिश्ता बन के जाए या इसी शरीर से जाएं या आत्मा बन के जाए, ये सोचने की जरूरत नहीं, मैं सूक्ष्म वतन में हूँ। देखो मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। हम यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको कहूँ कि चलो मन से बाबा के कमरे में जाकर बैठो, बैठ सकते हैं ना? तो स्थूल में हम यहाँ हैं, लेकिन वास्तव में हम बाबा के कमरे में हैं। हमारी संपूर्ण कॉन्शियसनेस चेतना वहाँ पहुँच गई, यहाँ से हम एब्सेंट हो गए। ऐसे फील करना है, मैं सूक्ष्म लोक ऊपर हूँ, बस सामने बाप दादा है, बाबा के मस्तक में शिव बाबा ज्ञान सूर्य चमक रहे। पहले इस पे करें अभ्यास, ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही है। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, थोड़ी देर उसका अभ्यास करें। फिर मस्तक पे तिलक लगाया और फिर वरदान दिए। कभी वरदान लो बच्चे बाप समान भव, कभी वरदान लो बच्चे साक्षी भव, कभी वरदान लो बेफिकर बादशाह भव, कभी विजयी रतन भव, ऐसे फिर बात करो। कुछ समस्या नहीं सुनाओ, समस्या ये है कि लोग समस्या सुनाते हैं और सुनाने में परेशान होते हैं कि बाबा सुनता नहीं। समस्या नहीं, बाबा का गुणगान करो, बाबा को थैंक्स दो, तुमने हमें क्या क्या दिया, नया जीवन दिया, सुखी जीवन दिया, सत्य ज्ञान दिया, चिंताओं से मुक्त किया। याद करो एक एक बात, सबके सबको अनुभव है जीवन के, बहुत क्या क्या बाबा ने दिया। थैंक्स करो बाबा को, प्यार फील होगा बाबा का। फिर कोई अपनी समस्या सुना दो, सुना ना दो, कहो ले लो बाबा, ये मेरी समस्या नहीं तुम्हारी है, ले जाओ, मैं मुक्त हूँ इस समस्या से। ऐसे इस समय को बिताएंगे। एक सुंदर प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए पुरुषार्थ की, सहज सहज। ऐसे नहीं बहुत सारा बना लें और दो ही दिन करें, तीसरे दिन छूट जाए, बिल्कुल सहज। इसको कहते हैं सिंपल एंड प्रैक्टिकल। अब हमें बुद्धि को स्थिर करना है। कौन बनेंगे योगी? अब उसमें सबसे सुंदर बात यह है, जिनका मन श्रेष्ठ विचारों से भरा हुआ हो और बुद्धि कैसी हो, क्लीन साफ। ये बुद्धि हमारा पात्र है, बर्तन है, जिसमें हम सारा दिन बहुत कुछ करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, किसी को देखकर आपके मन में कुछ चिंतन चला तो बुद्धि में क्या भर गया? नहीं, पर चिंतन तो मन में चला। अब उसका सूक्ष्म एसेंस सार, निगेटिविटी, अशांति, खुशी गुम, वह आपकी बुद्धि में भर गया। आपने किसी का अवगुण देखा, उसे दो मिनट चिंतन हुआ तो उस अवगुण का सूक्ष्म स्वरूप बुद्धि में समा गया। ये सूक्ष्म गति है। तो बुद्धि के नेत्र से जो कुछ हम देखते हैं या मन जिस तरह का चिंतन करता है, उल्टा, पहले उल्टे की बात करें, उसका सार बुद्धि में समा जाता है। तो बुद्धि में बहुत सारी गंदगी भर गई है, इसको साफ करना है। कैसे करेंगे साफ? झाड़ू तो कोई ऐसी है नहीं जो लगा दें, सिर्फ झाड़ू है गंदगी, साफ कर दो, सफाई हो गई। कैसे करेंगे बुद्धि की सफाई? नहीं, दो चीजें, बाबा की याद तो होगी नहीं ना, बुद्धि मैली है, क्योंकि बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र स्थिर होगा नहीं, उसमें गंदगी आ गई, इन आंखों में जरा सा कचरा पड़ जाए, आंखें स्थिर होंगे, टिमटिमाती रहेगी, दिखेगा ही नहीं कुछ। बुद्धि के नेत्र में कचरा आ गया तो बुद्धि का नेत्र बाबा के स्वरूप पर स्थिर होगा ही नहीं, आत्मा पर स्थिर होगा ही नहीं। अब ये हम सब ने बुद्धि में बहुत सारी चीजें भर ली हैं, अब से नहीं, हजारों साल से भरी हैं, वो सब बुद्धि में भरी हैं। वो हमारी बुद्धि को योग युक्त नहीं होने देती। तो दो तरीके अपनाएंगे, श्रेष्ठ चिंतन। श्रेष्ठ चिंतन का सार बुद्धि में समाएगा और जो निगेटिविटी बुद्धि में भरी है उसको जला देगा, नष्ट करेगा। इसको कहते हैं ज्ञान का बल। ये बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान के बल के कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। इसे योगी के लिए एक पिलर है ज्ञान का बल, ज्ञान का चिंतन। केवल क्लास करना नहीं, ज्ञान का चिंतन। मैं चार पिलर बताऊंगा आपको, भूल जाऊं तो याद दिलाना। वो पिलर नहीं जो चित्रों में है, दूसरे पिलर। दूसरा, बुद्धि की सफाई के लिए चाहिए श्रेष्ठ स्वमान। बस दो बातें करेंगे आप, श्रेष्ठ स्वमान, सुंदर चिंतन। होगा माताओं से सुंदर चिंतन? कहाँ से मिलेगा सुंदर चिंतन? कहाँ से मिलेगा? मुरली से। इसलिए सवेरे मुरली सुनने पर जब ओम शांति भवन से नाश्ते तक आओ तो भूल न जाए, सबसे सुंदर समय होता है ओम शांति भवन से नाश्ते तक आना, 5 मिनट। क्या याद रहता है? जल्दी खाएंगे, आज थेपला बहुत अच्छा बना होगा, आज ये बना होगा, ये नहीं। कोई 4 पॉइंट वहाँ से याद करते हुए आओ। कोई बात करते हुए आते हैं? माताएं तो बात करती हुई आती हैं, बात नहीं, 4 पॉइंट, वरदान, स्लोगन और 2 पॉइंट, और कोई सार वाली या पहली, जो आपको पसंद हो। कोई और बात अच्छी लगी हो उसे अपनी बुद्धि में समा के आओ वहीं से, और उसको वहाँ से नाश्ते तक आने में याद करो। एक दो बार याद करेंगे उसका सूक्ष्म एसेंस आपकी बुद्धि को दिव्य बनाएगा। यही बातें लोगों से मिस हो रही। मुरली सुनी, देखो जो बाहर लोग होते हैं, मुरली सुनी, ओम शांति हुई और क्या याद आएगा? घर चलना है, अब ऑफिस जाना है, उससे मिलना है। तो वहाँ का जो इफेक्ट था ज्ञान का, वो बाहर निकलते समाप्त, नई चीजें शुरू। लेकिन हरेक को 5-7 मिनट मुरली के सुंदर चिंतन में देने चाहिए। बाबा के समय क्या रस्म थी पता आपको? बाबा 6:10 पर क्लास में आते थे, 5 मिनट योग कराते थे, 6:15 मुरली चलती थी, 7:15 तक 15 मिनट मुरली रिपीट होती थी, और बाबा के बाद भी कई साल तक वो रीति रिवाज चलती रही। हमें याद है जो पॉइंट सुनाते थे हम, वो सारा दिन याद रहती थी। आप देख सकते हैं, अगर मुरली रिपीट कराई जाए तो जो बात आप सुनाएंगे वो आपको सारा दिन याद रहेगी। लेकिन अब रिपीट होने का और रस्म खत्म हो गई है, देर तक मुरली हो जाती है, फिर लोग भागते हैं ड्यूटी पे जाना, 8 बजे वो तो भी 8 बजे सेवा शुरू होती है। हाँ, रिपीट करना बहुत बड़ा, मैं कहूँगा ब्लेसिंग है, ज्ञान का बल भरने का बहुत सुंदर ये तरीका है। मैंने और भी बहुत सब सेंटर्स में एक बात सिखाई और बहुत बहनों ने शुरू कर दी है कि मुरली के बाद वो 10-15 मिनट कमेंट्री से योग कराएं। बहुत बहनों ने शुरू कर दिया ये सुन के, क्योंकि मैं क्लासेज में सुनाता हूँ तो सुन लेते हैं सब लोग नेट से। आजकल इतना अच्छा होता जाता है, जो लोग ओम शांति होते ही भागते थे, योग भी नहीं करते थे ना, अब वो 15 मिनट योग में बैठने लगे। योग क्यों नहीं लोग करते? क्योंकि योग लगता नहीं है। जिसका योग लगेगा वो तो बैठेगा, योग लगता नहीं तो भागते रहते हैं। अब जब कमेंट्री से बहनों ने योग कराया तो कमेंट्री एक अच्छी चीज होती है ना, थोड़ा लगा, दूसरे दिन और अच्छा लगा, तीसरे दिन और अच्छा लगा। और संसार में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जो योग का रस न चाहता हो, हर आत्मा चाहती है लेकिन उसे मिलता नहीं, उनके पास भी टाइम नहीं और बहनों को भी कभी ऐसी चर्चा करने का मौका नहीं मिलता। मुरली सुनने लोग आते हैं, आते भाग गए। लेकिन अगर चिंतन हो सेंटर्स में योग के अच्छे, और सवेरे शाम थोड़ा बहन, एक एक बहन भी तैयार हो जाए सेंटर में जो कमेंट्री से योग करे, हल्की कमेंट्री से, लंबी चौड़ी नहीं, सीखने की ज्यादा बात नहीं, ऐसा ही कर दे कि अब हम 3 मिनट इस अभ्यास में बैठेंगे, बस इनमें पूरे हुए, अब हम 3 मिनट इस अभ्यास में बैठेंगे। ऐसे 5 अभ्यास सुन ले तो 15 मिनट बहुत पावरफुल योग होगा और उससे सेवा वृद्धि बहुत होगी। सभी को जानना चाहिए सेवा वृद्धि योग बल से ही होती है, नहीं तो लोग आते हैं, योग लगता नहीं, चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? पवित्रता बिना योग बल के धारण नहीं होगी। कोई 20 साल से ज्ञान में चल रहे हो, मेरे पास इस तरह के मैसेज मिलते हैं मुझे, 25 साल से ज्ञान में चल रहे अब तक पवित्रता नहीं। मैं पूछता हूँ योग, योगी तो नहीं लगता। एक ऐसा कहते हैं हमें जिसने सिखाया ही नहीं योग का, बस जाओ बाबा के कमरे में योग करो, क्या है योग वो पता ही नहीं, बाबा को देखते रहते हैं, देख दाग के 5 मिनट में वापिस आ जाते हैं, बाबा को देखा है, ये तो योग नहीं है ना। न योग सिखाने वाले अच्छे रहे और सीखने वाले और भी ढीले, प्योरिटी आती नहीं, इसलिए छोड़ते हैं। और अब बहुत लोग ज्ञान छोड़ने वाले हैं, मैं गलत भाषा नहीं बोल रहा, कोई सोचे मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने योग नहीं किया वो अब जाएंगे। इसलिए सभी टीचर बहनों को भी योग सिखाने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। केवल ये कह देना बैठो और योग करो लो दृष्टि, इससे कोई योग नहीं करेगा। बाबा कमरे में जाओ और योग करके आओ, इससे कोई योग नहीं करेगा। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है, कोर्स करने वाला आया, बहन जी बिजी हैं, उसको कहेंगी जाओ 10 मिनट बाबा कमरे में योग करो, मैं आती हूँ। अब वो 10 मिनट बेचारा इधर उधर देख रहा, योग तो उसे पता ही नहीं, बहन जी को 15 मिनट हो गए वो उठ के चला गया। कहाँ भाग गया स्टूडेंट? फिर फोन कर रहे तुम आते नहीं हो, रुचि नहीं है ज्ञान में, रुचि कहाँ से होगी उसे, कड़वी न लगे मेरी ये बात किसी को, पर इन्हें हमें ठीक करना है। हमें योग अच्छी तरह सीखना है तो अपने मन बुद्धि को बहुत स्वच्छ करना है, मन में सुंदर विचार। मैं एक सुंदर विचार आपको देता हूँ, पहले भी यहाँ दिया है मैंने, जो साकार मुरलियों में साकार समय से ही मुझे मिल गया था और मैंने उसको बहुत दिन तक याद रखा। आपको भी मजा आएगा उसको सुन के, उसे योग बहुत अच्छा लगेगा। आज से उसको याद रखना, जब तक माताएं सेवा में हैं रोज 2-4 बार याद करना। बाबा ने कहा बच्चे तुम 2 युग तक देवताओं के साथ रहे, फिर 2 युग मनुष्यों के साथ रहे, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहो। याद करते ही योग लग जाएगा, लग जाएगा नहीं। फिर दूसरी लैंग्वेज में कहा तुम 2 युग देवताओं की गोद में खेले, फिर 2 युग मनुष्यों की गोद में खेलो, खेले अब भगवान की गोद में खेलो। मुझे मजा आ जाता था याद करते ही, सुंदर महावाक्य। ऐसे महावाक्य हमारे पास होने ही चाहिए। तो सभी मन बनाओ अपना, हमें सुंदर योग करना है, योग का सुख लेना है। बहुत बड़ा सुख है परमात्म सुख, ईश्वरीय सुख, इससे बड़ा सुख संसार में और कोई नहीं होता। या होता है अब क्या करते थे, स्वर्ग का सुख एक तरफ रख दो और ये ईश्वरीय सुख दूसरी तरफ, पलड़ा कौन सा भारी होगा, ईश्वरीय सुख का। इसलिए हमें सुख से स्वयं को भरपूर करना है, तैयार करें आप अपने को मन से कि बाकी बातें तो चलती रहेंगी जन्म जन्म, द्वापर युग से सब कुछ चलेगा, बात करने का भी खूब मौका मिलेगा। मैं तो माताओं का करता हूँ सतयुग में जाके खूब बात करना, अब अंतर्मुखी हो जाओ, नहीं तो माताएं क्या करती हैं, सवेरे 4 बजे योग में आ रही कमरे से तो भी बात करती आ रही हैं, जब योग करके जा रही तो भी बात करती जा रही हैं। शांति वन में हम देखते हैं तो भीड़ चलती है ना, तो माताएं बाहर निकली और रिमझिम शुरू। बाबा से बहुत बातें करती हैं तो शेयर करती होंगी आपस में, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आपने पॉजिटिव सोचा बहुत अच्छा, पॉजिटिव सोचने वाले अच्छा योग कर सकते हैं। तो पसंद है सबको योगी बनना है, चार पिलर, तो एक पिलर ज्ञान का चिंतन, दूसरा पिलर स्वमान, तीसरा पिलर आत्मिक दृष्टि, मैंने अभी ये चार पिलर बताए थे बच्चे ने, चौथा याद कर रहा हूँ, साक्षी भाव, साक्षी भाव और शुभ भावना। ये चारों जीवन में आने से प्योरिटी बढ़ेगी, योग बहुत अच्छा लगेगा। अपनी दृष्टि और स्वमान पे विशेष ध्यान देना है, लेकिन ज्ञान का बल अपने अंदर बढ़ाने के लिए सभी को एक काम करना है। यहाँ वाले वो तो करते हैं, माताओं से मैं कहूँगा रोज की मूल्यों से, चाहे अव्यक्त मूल्य हम सुनते हैं संडे को, कुछ ऐसी अच्छी बातें अपने पास नोट करो जो हमें बहुत बल दें। मान लो कभी कोई चिंता की बात आ गई तो जो हमें निश्चिंत करें, किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया, हमें फीलिंग हो गई, ऐसा पॉइंट जो हमारी फीलिंग को समाप्त करे, किसी कारण से हमारी खुशी गुम हो गई, तो ऐसी पॉइंट हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम बहुत जल्दी अपनी खुशी को वापस ला सके, इसको कहते हैं ज्ञान की, ज्ञान का बल, ताकि कहीं भी हमारी स्थिति में कोई रुकावट आए तो ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करके हम बहुत सहज और जल्दी अपने को निसंकल्प करें। तो सभी याद रखेंगे लास्ट बात, परिस्थितियों में बहुत हल्का रहना पड़ेगा, परिस्थितियां तो विकराल होती जाएंगी दिनों दिन। देखो जिन्होंने अच्छा योग नहीं किया उनको परिस्थिति बहुत आएंगी। छोटी सी बात याद आ गई मुझे, आज मैं एक डॉक्टर से चर्चा कर रहा था ग्लोबल हॉस्पिटल में, बहुत एजुकेटेड डॉक्टर आयुर्वेद में आई है, तो मुझे बता रही थी कि बहुतों के शरीर में ऐसी बीमारियां हो रही हैं कि न हमें कुछ समझ में आता न कोई दवाई काम करती। तो मैंने उसे बताया कि एक चार चीज अब होने लगी है, सभी को उसके लिए सावधान रहना है। मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा वो बात, कुछ समय से सभी आत्माओं ने जो पाप कर्म किए ना हजारों साल से, और विकार जो रहे हैं वो हमारे ब्रेन में रहते हैं सब, वो जागृत होने लगे हैं। उसके जागृत होने से ब्रेन इतना एक्टिव हो जाएगा निगेटिवली कि उसका इफेक्ट पूरे शरीर पर आएगा, तो लोग सो नहीं पाएंगे, मानसिक बीमार हो जाएंगे और अनेक कठिनाइयों से वो जूझेंगे। इसकी कोई दवाई होगी नहीं, इसकी दवाई होगी खुशी, बहुत हल्का रहना, स्वमान के अभ्यास, ज्ञान का चिंतन, यानी टोटल हमारा अध्यात्म। जो ये नहीं करेगा वो परेशान होगा, ठीक है। तो सभी बहुत अच्छे योगी बनेंगे। ओम शांति।